नमः शिवदेवः ओम नमः शिवदेवः ओम नमः शिवदेवः नमो श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय।
बाद में क्या होगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन अभी तो उनकी स्थिति बहुत गड़बड़ है। किनकी है? रात है, 12 बजे है और अंधियार तो बहुत छाक है। वर्षा का काल है, वर्षा घनघोर हो रही है और उस समय में से उस जमुना को पार करना है। अब जमुना को पार करना है, कैसे पार करना तो वो ही जान है। और एक ऐसा संदूक, ऐसी पेटी, उसमें वह व्यक्तित्व और उस थोड़े से ढक करके पार किया जा रहा है। और होनहार होनहार की बात कहते हैं लोग, समझ में बात नहीं आती। बड़ा होने की बात को बहुत बड़े बड़े बातें होती हैं, इन छोटे की कोई बात मानता नहीं, कोई सुनता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति भूत का लक्षण पालने में कहा जाता है, ये जानता है, पहचानता है, विश्वास करता है, मानता है, उसको मूर्त रूप देने के लिए वह हमेशा हमेशा उसकी रक्षा में और उसके देखरेख में लगा हुआ रहता है। और वह पार और पानी बढ़ता जा रहा है, और जमुना की बात है, पानी बढ़ता जा रहा है, और कैसे करें? और ऊपर ऊपर पानी बढ़ता जाए और धीरे धीरे
वर्षा का काल है, वर्षा घनघोर हो रही है और उस समय में से उस जमुना को पार करना है। अब जमुना को पार करना है, कैसे पार करना तो वो ही जान है। और एक ऐसा संदूक, ऐसी पेटी, उसमें वह व्यक्तित्व और उस थोड़े से ढक करके पार किया जा रहा है। और होनहार होनहार की बात कहते हैं लोग, समझ में बात नहीं आती। बड़ा होने की बात तो बहुत बड़े बड़े बातें होती हैं, इन छोटे की कोई बात मानता नहीं, कोई सुनता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति भूत का लक्षण पालने में कहा जाता है, ये जानता है, पहचानता है, विश्वास करता है, मानता है, उसको मूर्त रूप देने के लिए वह हमेशा हमेशा उसकी रक्षा में और उसके देखरेख में लगा हुआ रहता है। और वह पार और पानी बढ़ता जा रहा है, और जमुना की बात है, पानी बढ़ता जा रहा है, अब कैसे करें? और ऊपर ऊपर पानी बढ़ता जाए और धीरे धीरे नीचे खिसकता जाए, पुनः पानी बढ़ता जाए, नीचे खिसकता जाए। ये कौन सी करामत है, कुछ समझ में नहीं आता। और उस समय एक ही मात्र किसी भी प्रकार से ये घंटे दो घंटे में वह पार हो जाए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा है? आप तो समझदार है। कौन सी करामत है, कुछ समझ में नहीं आता। और उस समय एक ही मात्र किसी भी प्रकार से ये घंटे दो घंटे में वह पार हो जाए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा है? आप तो समझदार है ही, लेकिन अभी मझदार में कौन है ये भी तो ध्यान रखो। मझदार में जो होता है वह व्यक्ति हमेशा हमेशा
जीवन को संघर्ष में बनाता हुआ भी हर्ष में ही अनुभव करता जाता है। संघर्ष के बिना हर्ष नहीं होता। जब तक कस करके परिश्रम न करें और पसीना न आए तो बदन में एक प्रकार से जो लहर आती है उसकी अनुभूति किसी को नहीं होती। वो किसी भी प्रकार से आना चाहिए, पसीना आना चाहिए, तभी स्वास्थ्य, तभी हर्ष, तभी उल्लास और तभी कार्य करने के प्रति हमेशा हमेशा उत्साह पैदा होता रहता है। और वह गोपाल, अभी तो उनके पालन करने में कई लोग लगे हुए हैं। इतिहास को सुन करके, उस व्यक्ति के भविष्य के बारे में विश्वास करके और यह कार्य किया जा रहा है। और इसी के कारण जहां पर वो गए उसका नाम क्या बना है? गोकुल पड़ा है, गोकुल है। बात ऐसी है कि जो तीन खंड के अधिपति बनने वाला है उसके घर में लालन पोषण नहीं हुआ। कोई दूध पिलाने वाले, कोई रखवाल करने वाले नहीं मिले, लेकिन पूत का लक्षण पालने में ले बात है, इसका रक्षण हमें करना है। इसका रक्षण किया, इसके माध्यम से गोकुल का रक्षण हो जाएगा, इसको ले चलो इनको। ये हुआ। सर्प ने उस समय छत्र का आकार बना करके उनकी रक्षा का नहीं कि यह वह व्यक्ति होने वाला है, इसके माध्यम से सारे सारे उस गोकुल की रक्षा होने वाली है। पानी ऊपर आना चाहता है लेकिन आ कैसे चाहता है? उसके पैरों के चरण के स्पर्श करते हैं, प्रक्षाल करने के लिए वह जमुना की बाढ़ बढ़ती थी लेकिन और नीचे चली जाती थी। और वह बाढ़ अपने आप को सार्थक मानती थी कि आज चरणों का प्रक्षालन हुआ है। और उसी नदी में से निकल करके एक सर्प ऐसा बड़ा फनादार बना करके और उसके लिए ऊपर से वर्षा न हो छत्ते का क्रम किया। ये सब कहां से आया? ये केवल उस व्यक्ति की छिपा हुआ, भीतर छिपा हुआ जो पुण्य है, और वह पुण्य जो स्वार्थ परायणता को लेकर के नहीं किंतु वह एकमात्र सबका कल्याण हो। गोकुल, आप लोग बड़े कुल की बात तो करते हैं लेकिन गोकुल की बात नहीं करते। आप कौन से कुल के? हम बड़े कुल के हैं। बड़े स्वाभिमान के साथ कहा जाता है कि बड़ कुल है। जिनका कुल बड़ा होता है उनको बड़ कुल बोलते हैं, लेकिन गोकुल की बात नहीं करते। ध्यान रखो, बड़े कुल की रक्षा उन गायों के दूध के बिना हो नहीं सकता है, मिलता है। तो वह गोकुल मनुष्य के पास बुद्धि है, उसके विकास के लिए परिश्रम कर ले तो बुद्धि का विकास बहुत हो जाता है। पशुओं के पास भी बुद्धि है लेकिन उनके लिए विद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं होती। उनके पास ऐसी भावना रहती है, ऐसी प्रकृति, ऐसा वातावरण उनके जीवन में रहता है और पूर्व सहज से ही वह वातावरण रहता है कि वो उनकी उदारता के सामने मनुष्य की उदारता बहुत बोनी हो जाती है। उसके पास कुछ भी स्वतंत्रता नहीं होते हुए भी वो अपनी प्रकृति का, अपने स्वभाव का इतना फैलाव कर सकते हैं उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कि संतों ने मनुष्य के साथ, मनुष्य के लिए तो उपदेश दिया है और संतों ने उपदेश औरों के लिए भी दिया है लेकिन उनके लिए शब्दों के द्वारा नहीं दिया, उनके भावना के तरंग मात्र भेज दे, उसके द्वारा अपने आप ही प्रकृति में परिवर्तन होता चला जाता है। वो कभी भी फिर अतिक्रमण नहीं कर सकते। संभव है प्रशिक्षण देने के उपरांत मनुष्य अतिक्रमण कर जाता है, व्यतिक्रम कर जाता है, अनाचार कर जाता है, अनेक प्रकार के हरकत कर सकता है, लेकिन प्रकृति में रहने वाले पशुओं में ऐसी हरकत अभी तक नहीं देखी। आगे जाकर के क्या हुआ ये तो आप जानो, लेकिन उनका गोकुल में जो संरक्षण, वृंदावन में जो संरक्षण हुआ वो अपने आप में एक गजब का हुआ।
और ऐसा सहज रूप से पालन पोषण हुआ और वह आगे के लिए एक वरदान सिद्ध हो गया। यदि जहां उत्पन्न हुए वहीं पर रह जाते हैं, तो इस प्रकार कि पशुओं के बारे में प्रेम वात्सल्य की बात अपने बीच नहीं आ पाती। यह सही बात है। आगे जाकर के जैन पुराण के अनुसार वे महान तीर्थंकर होंगे। वो जो गोपाल हैं वो महान तीर्थंकर होंगे और उन महान तीर्थंकर भावी महान तीर्थंकरों के लिए आचार्य कुंद देव ने अपने प्रवचन सार के मंगलाचरण में बार बार नमस्कार किया है, क्योंकि तीर्थंकर वह होता है कि जो बहुतों का कल्याण करने के लिए कमर कस करके रह जाता है। उस जीवन में उन्होंने जो कुछ किया, लेकिन आगे भी जाकर के कितने असंख्य जीवों का उद्धार उनके माध्यम से होगा हम नहीं कह सकते। जीव मात्र के लिए जिनका जीवन समर्पित हो जाता है, हमें समझना है कि एक नीति वाक्य में आया है कि जो दांत वाले हैं नाखून वाले हैं, दांत वाले हैं और नाखून वाले हैं, और जो सींग वाले हैं उनसे बचियो। लेकिन मैं कहता हूं मनुष्य के पास नाखून है लेकिन वो नाखून नहीं है, मनुष्य के पास दांत हैं लेकिन वो दांत नहीं है जो व्याघ्र चीते इत्यादि के मुंह में रहते हैं, मनुष्य के पास तो सींग तो है ही नहीं, इसलिए इनसे बचने कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभ्य प्राणी हैं। लेकिन संत कहते हैं नहीं, इसका मात्र यह नहीं है, उस मनुष्य से भी बचना चाहिए जो मनुष्य के लिए वरदान है, उनके ऊपर भी यदि शस्त्र चलाता है तो वह मनुष्य निश्चित रूप से स्वार्थ से घिरा हुआ है। वह देखने के लिए तो नाखून नहीं रखता, देखने के लिए जवाड़ में दांत नहीं रखता, देखने के लिए उसके पास सींग नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखो वह सबको परतंत्रता का अनुभव करा सकता है। मनुष्य कई दृष्टि से खतरा बन सकता है, लेकिन आज तक जो सभ्य प्राणी पशु खतरा नहीं बना मनुष्य के लिए, तो और बल्कि यूं कहना चाहिए वह वरदान सिद्ध हुआ। मनुष्य माने या न जाने कुछ भी करें, लेकिन वह तो अपना कर्तव्य करता ही चला जाता है। एक बात इस गोकुल के माध्यम से आपको सिद्ध होता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था और आगे इससे भी बड़े और काम करेंगे। ऐसे महान पुरुष जो 63 शलाका पुरुष में और 169 वो 72 होते हैं, दिन कम हो गए कुछ भी हो, तो ऐसा हो ये महापुरुष माने जाते हैं। और महापुरुष वो होते हैं कि त्रैकालिक इतिहास स्थापित करते हैं, उनका इतिहास एक ही दिन में नहीं बनता, अतीत भी उनका अलग रहता है, वर्तमान भी उनका अलग रहता है, भविष्य भी उनका अलग बना हुआ रहता है, तीन तीन पीढ़ियों के साथ उनका संबंध इस ढंग से जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे जो पशुओं के बारे में, जीव मात्र के बारे में जिन्होंने वात्सल्य भाव रखा है, उनके प्रति आप लोगों को अवश्य रूप से सोचना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। आगे तो यह गोकुल का इतिहास, मथुरा का इतिहास, हरिवंश का इतिहास अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। भूत का लक्षण पालने में इसको थोड़ा सा हमने आधुनिकरण करने का प्रयास किया है। मुख माटी में ये पंक्ति आपके सामने मिल सकती है, लेकिन आज खोलने का अवसर आया है। भूत का लक्षण पालने में अर्थ क्या होता है? अर्थ यह निकाला जाता है जब वह पालना झूला जाता है, उसी समय भूत के लक्षण देखने में आ जाते हैं। मैं इस बात को अब मंजूर नहीं करना चाहता हूँ। वह तो पूत थे, उनके लक्षण तो देखने में आए, क्योंकि सर्प ने आकर के रक्षा कर दी और जमुना भी डर गई, पाद प्रक्षाल करके वह चली गई। लेकिन आज के पूतु, मैं उसी को पूत मानता हूं, पालने में लक्षण नहीं। पूत का लक्षण आज्ञा पालने में है। नहीं तो झूला झुलाते हो, बूढ़े भी हो गए आपके, झूलेंगे क्या आपको लेकर के? अब तो नहीं होगा, वो रहा नहीं। जो बात कही गई है संतों के माध्यम से या तो भगवान के माध्यम से, उसका पालन जब तक आप नहीं कर सकते, तब तक आपको हम सपूत नहीं कह सकते। पूत का लक्षण पालने में का अर्थ आज्ञा पालन करने में होना चाहिए। और भगवान की यह आज्ञा है, जीव मात्र की रक्षा करने के लिए जो तैयार है वह अपने शक्ति के अनुसार भले करे, लेकिन करके दिखाना चाहिए। महावीर भगवान का अहिंसा धर्म विश्व धर्म है, यह कहने मात्र से सिद्ध नहीं होने वाला है। चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, वो महावीर भगवान की उपासना कर सकते हैं और उनका यह कर्तव्य है। जो विशेष रूप से जिसके लिए अन्याय हो रहा, उस अन्याय को अब सहन नहीं करना चाहिए। जैसे पूर्व वक्ता ने कहा है, उसी के लिए वोट देना चाहिए। वोट का जमाना तो बहुत देख लिया गया है, क्योंकि ऐसा नाटकीय दृश्य हो जाता है कि वोट के लिए तो बहुत सारे नमस्कार हो जाते हैं और ऐसी प्रतिज्ञा ली जाती है। जनता के पास ऐसी प्रतिज्ञा होना चाहिए कि कोई जीतने के उपरांत भी यदि काम नहीं करता है, यथा राजा तथा प्रजा, एक उक्ति आई है संतों के मुख से। राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा का वह पालन करें, पोषण करें, उनको सुखी बनाएं और धर्म की ओर आकृष्ट कराएं। यह राजा का कर्तव्य होता है। यदि प्रजा में उच्छृंखलता आए, हिंसा की वृत्ति छा जाए, स्वार्थ परायणता आ जाए, उपकार की दृष्टि गौण हो जाए, तो राजा का कर्तव्य होता है उसको दंडित करे, उसको शासित करे और उसको इस प्रकार की शिक्षा दे और बोध दे और बाध्य करे। उसके बिना उसको चैन नहीं मिलती। राजा के इर्द गिर्द मंत्रिमंडल रहता था और जिस राजा के मान लो मंत्रिमंडल में खलबली मच जाती है तो राजा अपने ढंग से उनको अनुशासित करता था। लेकिन यह भी बात ध्यान रखने योग्य है, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, कई राजा अपने कान के कच्चे हुआ करते थे और मंत्रिमंडल के माध्यम से उन कच्चे कानों के स्थान पर पक्की कान लगाए जाते थे। पक्की कान का अर्थ मतलब ऐसा नहीं कि ऑपरेशन कर लिया जाता था, कि पूरा मंत्रिमंडल मिलकर के राजा को बाध्य कर दिया जाता था कि आप अनुशासित नहीं हैं और हमें आप अनुशासित करिए और हम अनुशासन के प्रिय हैं तो आपको भी अनुशासन के सूत्र में बंधना होगा। ऐसा नहीं, आप राजा तब कहलाते हैं जब हम मंत्री हैं, जब अब तब राजा कहलाते हैं जब ये प्रजा विद्यमान है। आज प्रजातंत्र है, ध्यान रखो, आज राजतंत्र नहीं है। जिनको आपने चुन करके ऊपर भेजा है वे यदि उच्छृंखल कर रहे हैं तो आपका भी उसमें सहभागीपन विद्यमान है, यह सिद्ध हो रहा है। पूत का लक्षण पालने में है। यदि आप यहां पर घोषित करते हैं तो वह सिंहासन हिल सकता है और हिलाना चाहिए। यदि नहीं हिला रहे हैं तो अन्याय का समर्थन आप कर रहे हैं, अहिंसा के नहीं हिंसा के आप समर्थन कर रहे हैं, पालन के नहीं किंतु आप उसके वध के समर्थन कर रहे हैं। जब लाखों के सारे सारे जनता को यह विदित बात हो गई है तो क्यों नहीं रोक सकती है वो? ये आप लोगों की कमजोरी मानी जाती है और इसका पूरा का पूरा लाभ आपके द्वारा जो भेजे गए हैं वो ले रहे हैं। हम क्या करें, वहां पर जाने के उपरांत वातावरण अलग बन जाता है तो फिर वहां का वातावरण पहले सुधारिए। यहां का वातावरण तो सुधरा हुआ है, पर्यावरण दूषित नहीं है। मनुष्य का मन दूषित है, पर्यावरण में कोई भी दूषण नहीं है, पूरी की पूरी पर्यावरण में दूषण का आने में कारण मनुष्य ही एकमात्र कारण है। पशुओं के माध्यम से पर्यावरण अपने आप ही साफ शांत हो जाता है। आयुर्वेद के ग्रंथ हैं कि उसमें लिखा गया है कि पशुधन जहां पर विशेष रहेगा, मनुष्य में आने वाले जो बीमारियां अपने आप ही शांत हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है कि रेडियो एक्टिविटी जो है वहां गाय के दूध में नहीं और गाय के गोबर में नहीं है, और गाय के इर्द गिर्द बिजली नहीं आ सकती, ये ध्यान रखो। पेड़ पौधे के ऊपर तो बिजली आ सकती है, पड़ सकती है, लेकिन गाय के दूध और गाय के जो गोबर है उसके ऊपर नहीं है। आज सीमेंटेड हो गए हैं आप लोग, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपके दिमाग के ऊपर तो, मनुष्य के दिमाग के ऊपर तो बिजली गिर सकती है, लेकिन गाय के गोबर के ऊपर नहीं और गोधाम के ऊपर नहीं गिर सकती। आपके गोदाम के ऊपर गिर सकती है, हाँ संभव है। वह समय आने से पूर्व आप लोगों को सचेत होना चाहिए। प्रजासत्तात्मक राज्य के 50 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी कि दया का वातावरण, जो सत्ता अलग थी उस समय भले ही दया नहीं आती हो, लेकिन इस समय तो आपके हाथ की बात है। देखते देखते हजारों में कत्ल खाने खुलते चले गए। जितने भी एक वायसराय कौन आए थे, उनका नाम मैं तो भूल गया, कि बलि देने की और सती जाने की प्रथा को उन्होंने रोका था। हाँ, तो ऐसे कोई, तो उसको देख करके मैंने सोचा कि कहां तो ब्रिटिश सत्ता और इस प्रकार की कुप्रथा को समाप्त कर गई, और ये उस समय यज्ञ कराना तो समाप्त कर दे। एक दयानंद सरस्वती थे कि वेद के जो अर्थ उल्टे निकाले जा रहे थे, उन्होंने अहिंसा परक अर्थ निकालने के सिखा दिया आर्य समाज के नेता ने, दयानंद सरस्वती ने, जिनका अवसान अजमेर में हुआ। उस स्थान को भी हमने देखा कि ये बात देखकर के ऐसा लगता है कि जो बरसों तक वेद का अर्थ, वेद के सूत्रों के अर्थ, ऋचाओं के अर्थ सारे के सारे हिंसा परक निकाले जाते थे और बड़े बड़े होम किए जाते थे, आहुति दी जाती थी और बलिदान होता था, चला जाता था, और एक व्यक्तित्व था, उन्होंने उसको नहीं, ये हिंसा परक अर्थ हो नहीं सकता, वेद तो अपने आप में एक बहुत पवित्र वस्तु है, ऐसी स्थिति में वेद का अर्थ ऐसा कैसे निकाला जा सकता। एक तो शास्त्र माना जाता और शास्त्र में हिंसा का तो समर्थन हो ही नहीं सकता। तब सब लोगों की आंखें खुल गए और सारे सारे अर्थ का पूरा ही परमार्थीकरण हो गया, हिंसा रूप में वह परिवर्तित हो गया। तो आज वह पुनः स्थापित होने जा रहा है उसी भारत में। एक 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 कत्ल खाने प्रतिदिन के होम यज्ञ के हैं और यहां से चले जाते हैं रष्ट पुष्ट पशुओं का धन, वहां पर जाकर के लाखों के तादाद में संख्या में ये आहुति हो जाते हैं, और केवल एक इसके लिए भारत को उन्नत बनाने के लिए इस मांस को बाहर भेजा जाता है, देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता और पढ़ा नहीं जाता। और आप लोगों के मुख को देख करके ऐसा लगता है कि अब क्या इनको हम समझाएं। इस प्रकार के मंत्रिमंडल की आवश्यकता है कि राजा के कच्चे कानों के स्थान पर अच्छे कान लगा दिया जाए। बिल्कुल ये ठीक कहता हूं, कोई भी संविधान के सूत्र में है नहीं कि वह उसका वध कर ही दीजिए, वध करने का सवाल ही नहीं उठता। यह मैं किसी बात को लेकर के या किसी सांप्रदाय को लेकर के नहीं कह रहा हूं, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है तो महाराजा का भी कर्तव्य होता है। बिना अपराध के लिए उनके ऊपर शस्त्र क्यों, और आपके पालन पोषण के लिए यह गलत बात है, राष्ट्र की उन्नति के लिए यह गलत बात है। ऐसा अभिशाप सिद्ध होने से पूर्व में आप लोगों सचेत होना चाहिए। और विद्वत वर्ग है, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जजमेंट देने वाले जज इस प्रकार विद्यमान है। सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में इसके विपरीत एक सुनवाई प्रवेश हो चुका है, लेकिन इतने प्रवेश मात्र से पर्याप्त नहीं, प्रत्येक अहिंसक व्यक्ति पुजारी की यह बात अवश्य है कि वहां तन से मन से और धन से किसी भी प्रकार से बाध्य करके उस सूत्र को ठीक कर देना आवश्यक है कि पशु वध जो है विधेय नहीं हो सकता है और उसके रक्षण करना आप लोगों का काम है, उन मंत्रियों का काम नहीं है, क्योंकि उन लोगों के सामने एक जनता है, हमने उनकी भी बात सुनी है, महाराज इतने सारे सारे पशुओं का संरक्षण कौन करेगा, हम लोगों के लिए समस्या आ जाएगी, इसके बारे में भी आपने क्या सोचा है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि राजा का यह कर्तव्य होता है, मंत्रियों का यह कर्तव्य होता है, नेताओं का यह कर्तव्य होता है, इनका संरक्षण कौन करेगा? ये स्वयं हाथ यूं मांगने वाले आप लोग हैं, मंत्रियों के पीछे कोई भी आ जाते तो यूं हाथ यूं मांगते रहते हैं, हमने से ये क्या मांग रहे हैं, आपसे लेकर के वो आपको क्या देंगे, कोई लॉटरी लगाएंगे क्या वो जो आपके लिए ला करके देंगे, वो कहां से लाएंगे? नहीं, ये आपका कर्तव्य होता है, आप वहां पर भेजे हैं, आपकी मांग नहीं, अच्छे ढंग से उत्पादन करिए, अहिंसा का समर्थन करिए, उनके संरक्षण के लिए यदि वित्त आवश्यक है तो आप लोगों का कर्तव्य है, इतिहास पढ़िए और आप लोग एक घर का मेंबर आपका है तो जिस प्रकार उसका पालन पोषण होता है उसी प्रकार आपके नगर में, आपके गांव में, आपके परिवार में जो कोई पशु वध हो रहा है उसको रोक देना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, यह परम कर्तव्य है, आपका एक सदस्य है घर का, वो उसको करना, उनकी समस्या समाप्त हो जाएगी। यह यदि आप लोग उनको विश्वस्त बना देते हैं कि आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जितना पशु है जो वध के लिए जा रहा है उसका पूरा का पूरा संरक्षण हम करेंगे और ऐसे ही पशुओं के दया के केंद्र खोल करके हम करके दिखाएंगे, निश्चित रूप से आपकी बात अवश्य सुनने में आएगी। यदि यह कार्य आप नहीं करेंगे, जैसे पूर्व वक्ता ने कहा, संरक्षण के बिना यह कार्य नहीं हो सकता, हमने 5-6 साल से यही कहा है कि संरक्षण आप करते चले जाए, निश्चित बात है, और किसानों का यह परम कर्तव्य है, जो ठाकुर माने जाते हैं, यादव माने जाते हैं, क्षत्रिय माने जाते हैं, उन लोगों का कर्तव्य है कि कभी भी अपने घर में कोई भी भारमय पशु हो गया तो उसको जहां कहीं भी बेचना नहीं चाहिए। जितने भी किसान हैं उन किसानों के पास जाकर के कह दो कि नहीं, आपके पास संरक्षण का यदि व्यवस्था नहीं है तो हम करने के लिए तैयार हैं। स्थान स्थान पर इस प्रकार के शालाओं का गुण होना चाहिए, की व्यवस्था चाहिए, आप लोगों की सारी सारी व्यवस्था चाहिए। इसी प्रकार आप लोगों का कर्तव्य है पशुओं के संरक्षण के बारे में भी आप करिए, अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक नगर का यह कर्तव्य है, जो कोई भी आस पास में गांव है उन गांव को पास संबंध स्थापित करिए, एक बहुत अच्छा साधन आप लोगों के लिए उपलब्ध हो गया इस सत्ता के समय पर, जो पंचायत क्या बोलते हैं, पंचायत राज्य, हाँ पंचायत राज, तो उसके माध्यम से जितने भी गांव के सरपंच हैं उनके पास जाकर के कह दो देखो यहाँ पर आवश्यक है, आपका यह कर्तव्य है, जो कोई भी अनाथ पशु इस प्रकार हो गए, अनाश्रित हो गए, उनका संरक्षण आपका करना आवश्यक, किंतु यहां से एक भी गाय भैंस और पशु जो है इधर उधर बेचने के लिए नहीं जाना चाहिए, कटने के लिए नहीं जाना चाहिए, उसके लिए आश्रम मिलना चाहिए। ऐसे कर देंगे तो जैसे आपने कहा था कि कत्ल खाने अपने आप ही खाली हो जाएंगे, यहां से यदि पशु वहां तक नहीं जाएगा तो उनका क्या भविष्य होगा, उनका भविष्य कुछ नहीं है, ध्यान रखो, आपका यह वर्तमान कार्य कर रहा है उनको मजबूत बनाया जा रहा है। सुनते हैं रात के 12 बजे आकर के बच्चे बोलते हैं महाराज आज तो 25 ले आए, आज तो 27 ले आए, ये भी एक ध्यान रखना, यदि किसी के आ जाता है तो उसको एकदम छीनना नहीं चाहिए, एकदम पहले भी हमने संकेत दिया था छीनना नहीं चाहिए, मान लो खरीद करके ले आए तो उनके लिए तो हानि हो जाएगी, आपका कर्तव्य है, आप कहां ले जा रहे हैं, डांटिए करिए, काटने के लिए नहीं ले जा सकते, हमारे पैसा दे दो तो आपको पैसा चुका देना चाहिए बस, लेकिन इस प्रकार से नहीं लेना ताकि वो अपने आप ही सही हो और उनके लिए मिले नहीं, इस प्रकार का प्रबंध करिए आप। इस प्रकार करने से, संरक्षण करने से प्रतिपल आपका पुण्य बढ़ेगा, आपका धर्म जीवित रहेगा, तो आपका जीवन जीना अच्छा माना जाएगा, नहीं तो नहीं।
अब अंत में और कहना चाहता हूं मैं, आपका समय हो रहा है क्योंकि आप लोग चलते हुए हमारे साथ आए हैं। ये बात अलग है, गाड़ी चलाते भी आए हैं कुछ लोग, लेकिन आए तो हैं कि एक बजे वहां से चले, धूप में चले, सब लोगों को पसीना आ गया, लेकिन जाना है गौशाला का आज उद्घाटन है। लेकिन गौशाला में देखते हैं तो आप ही पहले आकर के बैठे हैं, वहां पर गाय वगैरह दिखते नहीं, वहां से दिख रहे हैं वृंदावन जैसा लग रहा है। इसी को देख करके हमने सोचा कि वो वृंदावन का दृश्य और गोकुल का दृश्य देखने में आ रहा है। आप लोगों की भावनाओं से, उन गायों के भावों में निश्चित रूप से लहर आ रही है, ध्यान रखना, क्योंकि यह हमारे रक्षण के लिए कार्य हो रहा, हमारे लिए त्योहार का दिन आ गया। वो ऐसे सोच रहे हैं हमारी संख्या अब सुरक्षित होने जा रही है, हमारे पीछे कोई है, ऐसा जो है वो सोच रहे हैं। इसलिए सारे सारे व्यक्तियों का निश्चित रूप से भविष्य उज्जवल है। आप देख लीजिए कि महावीर भगवान ने कहा, चौबीस भगवानों ने, राम ने और कोई भी किसी ने भी, कि यह एक सिद्धांत दिया है। महावीर भगवान का सिद्धांत या अहिंसा धर्म का सिद्धांत क्या होता है, हिंसा कहां से घटित होती है, अहिंसा कहां पर पलती है, आपको देखना है। महावीर भगवान ने या अहिंसा धर्म के नेताओं ने सूत्र दिए है, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा का अर्थ क्या होता है और परिग्रह का अर्थ क्या होता है? मूर्छा का मैंने मोह ममता, और इतनी कि वह मूर्छित हो जाए धन के पीछे, उसका नाम परिग्रह है। वस्तु का नाम परिग्रह नहीं, किंतु वस्तु के प्रति जो अटैचमेंट है, पकड़ है, वह मोह है, वह मूर्छा है। वह इतनी मूर्छा है कि सामने वाले जीव को ही पहचाने नहीं, और उस वित्त के और उस वस्तु के पीछे चिपकता चला जाए, इसका नाम मूर्छा है। और मूर्छा जिसके पास है उसका जीवन का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। मूर्छित होने वाला व्यक्ति सम्यक दर्शन का पात्र नहीं हो सकता। मूर्छित होने वाला व्यक्ति एक दूसरे का पूरक नहीं हो सकता। मूर्छित होने वाला व्यक्ति कभी उपकार कर नहीं सकता। मूर्छित होने वाला व्यक्ति उपकार को कभी जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, वह महान कृतज्ञ माना जाता है। हमारे यहाँ कृतज्ञता की पूजा हुई है, कृतज्ञता की पूजा नहीं है। किए हुए उपकार का जो हनन करता है वह कृतज्ञ माना जाता है। तो वह जितने भी साधु संत या महान भगवान हुए हैं, उनका यह कहना था, यदि तुम कृतज्ञ बनोगे तो कभी भी उद्धार नहीं हो सकेगा। जीव का पालन करना यही कृतज्ञता है, अन्यथा और कोई उपदेश का फल नहीं है। देखो परिग्रह का कैसा होता है कि बच्चे या और कोई भी मनोरंजन करने वाले दो तीन व्यक्ति वहां पर चले गए। कहां पर चले गए? एक व्यक्ति दो तीन घड़े रखे हैं और उस पनघट के ऊपर पानी वह नीचे से खींच रहा, बाल्टी से उसमें भर रहा है। दो व्यक्तियों ने मनोरंजन के रूप पर कंकर लेकर के उस घड़े के ऊपर फेंक दी। फेंकने के कारण वह घड़ा फूट गया। घड़ा फूट गया तो वो घबरा गए, कहीं ऐसा ना हो। जो पानी खींच रहा था उसकी दृष्टि उस ओर नहीं गई अभी। फिर इसके उपरांत दूसरे ने क्या कर दिया, तो भैया एक दो और है, इसको भी तो मजा ले लो। उसने कंकर पुनः फेर दिया। कंकर फेंकने से वह कंकर उछल करके और उस ओर चला गया। उसने सोचा, ये क्या बात हो गई, वो घड़ा तो फूट गया और ये घड़ा तो फूटा नहीं। एक और कंकर उसने उसके ऊपर फेंक दिया। उसने आवाज से कर दिया, ध्यान रखो, जो वह मालिक तुम्हारे देखेगा तो तुम्हारे सीधा कर देगा। आवाज आ गई। क्यों आवाज आ गई बताओ? जो घड़ा भरा हुआ था उसको पत्थर मारने से वह फूटता है, और जो घड़ा खाली रहता है वह संदेश भेज देता है कि ध्यान रखना, तुम्हारा माथा फूट सकता है लेकिन मैं नहीं फूटूंगा। क्योंकि मैं खाली हूं। भगवान कहते हैं कि जिसका घड़ा खाली रहता है वो दो काम करता रहता है, ये मरने से वो बचा देता, डूबने से वो बचा भी देता है और संदेश देता है संगीत। यही खाली होना ही महावीर भगवान का संदेश है। अब आप लोगों को अपने घड़े खाली करना है, बिल्कुल खाली रहेंगे तो संगीत का स्वर सुनने में मिलेगा, नहीं तो आप मूर्छा की बात समर्थन करोगे तो हम तो इसको मानेंगे कि भैया ये पूत तो है लेकिन पालने में कमजोर है, और पूत जो है पालने में भी कमजोर है तो उसको शिक्षा दीक्षा और विशेष रोख रखवाली कोई नहीं करता। घर वाले भी समझते भैया हम खर्च करें और इसके ऊपर खर्च करने के ऊपर दीदी खर्चा नहीं निकले तो मामला गड़बड़ है, इसलिए हमने एक चातुर्मास खर्च करके आप लोगों के लिए दिया है और आप लोगों ने किया तो है लेकिन जितने अनुपात से उधर खर्च हो रहा किधर अपने घर वालों की तरफ से उतना खर्च अभी खुल करके नहीं हो रहा, बार बार कहने के उपरांत थोड़ा सा आ जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, जिसको ज्यादा मोह होगा इसका वही व्यक्ति अच्छे ढंग से देगा, देगा तो सही। कार्यकर्ता कभी उदास न रहें, और कार्यकर्ता यदि दूसरे से चाहते हैं तो स्वयं भी लगाने का प्रयास करते रहें। ऐसा नहीं कि पहले पहले साल में लगा दिया और इस साल में हम क्यों लगाया, ऐसा नहीं। प्रतिदिन खाया जाता, प्रतिदिन पिया जाता, और मैं ये पूछना चाहता हूं दुकान पहले साल में थी इस साल में नहीं है, जब दुकान का काम प्रति साल चल रहा है, प्रतिदिन दो दो बार भोजन चल रहा है तो उसी प्रकार सेवा के कार्य भी प्रतिदिन होना चाहिए। मैं जिस समय पहले एक बार आया था उस समय वहां पर 200-250 पशु थे, उसको देखा तो ऐसे बिल्कुल कि उनको कुछ है नहीं, डर ही नहीं, चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं, शांति के साथ रह रहे हैं। और हो सकते हैं आपके धार्मिक प्रभाव उनमें पड़ जाए, संभव है आप श्रावक व्रत आप जैसे पाल रहे हैं उसी प्रकार उनमें भी कई श्रावक हो सकते हैं। बंधु आपके धर्मज्ञता के प्रति उनका कोई यूं कहना चाहिए उदासी हो ऐसा नहीं, वो पहचानते हैं आपके धर्म को, वो भी पहचानते हैं और वो मुख से नहीं बोलते हैं लेकिन वो अपने भावों के द्वारा आपके समर्थन करते हैं। इसलिए ऐसे पशु जो बहुत काम के योग्य हैं, छोटे छोटे भी हैं, और ऐसे के लिए जो है बिल्कुल सीधा कत्ल के लिए जले जाते हैं ठीक नहीं। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन ज्यादा प्रशंसा तो मैं करूंगा नहीं। अभी आप लोगों ने जो वायदा किया था, हमने जो वायदा किया था भैया यहाँ पर हम चातुर्मास करेंगे और बल्कि 2 माह और ज्यादा दे दिया, लेकिन आप लोगों ने वायदा तो किया लेकिन वायदा को अभी पूर्ण नहीं किया, क्यों भैया है? महाराज ऐसा है काम चालू तो हो गया है, बहुत अच्छा है काम चालू तो हो गया लेकिन कीड़ी की गति से होने से बहुत कुछ प्रभाव, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक ये इस प्रकार की बात है, फिर यहां से हम चले जाएंगे तो क्या होगा। एक व्यक्ति ने कह दिया कि अभी मत जाइयो, तो कब तक नहीं जाइयो बताइए, ये तो बात बताओ। अहिंसा परमो धर्म,
तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, सारे जहां में हम तस्वीर लिए फिरते हैं, जैसे सूरज की किरणें कमल की पांखुरी को मुखरित कर देती है, वैसे ही गुरु की वाणी शिष्य के भीतर सोए हुए परमात्मा को जगा देती है। बिंदु से बिंदु और क्षुद्र से विराट तक की अंतर यात्रा में गुरु पथ के प्रदीप की तरह पथ प्रदर्शित करते हैं, तभी तो ऐसा लगता है।
भव्य जीवों को तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाने व समोसरण की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। काल चक्र के प्रभाव से वर्तमान समय में हिंसा, अराजकता, अन्याय, भ्रष्टाचार जैसा दूषित वातावरण अंधकार रूप में व्याप्त है। किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुवर रूप में ऐसे तेज सूर्य प्रकाश पुंज का सानिध्य प्राप्त है। ऐसे गुरु दर्शन मात्र से मन का कलुष मिट जाए, ऐसी गुरुवाणी जैसे दिव्य ध्वनि, ऐसे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के परम शिष्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में सत सत वंदन। आचार्य श्री जी के प्रवचनों का संग्रह प्रस्तुत है। आचार्य श्री जी के प्रवचनों की सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें ब्रह्मचारी जी श्री अजित वीर, श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम इंदौर, दूरभाष 545744।
पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, कुरीतियों का अब तो हमें अंत चाहिए। तंग घना अज्ञानता का छारना है घर, आज विद्यासागर जैसा संत चाहिए।